जो कि सत्यव्रत मुनि द्वारा विरचित है, इसका अनुवाद हम पढ़ेंगे। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जो कि सत्यव्रत मुनि द्वारा विरचित है, इसका अनुवाद हम पढ़ेंगे। जिनका सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान हैं, जो दधि भांड फोड़ने के कारण मां यशोदा के डर से उखल से दूर दौड़ रहे हैं, किंतु जिन्हें मां यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे भगवान दामोदर को मैं अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूं। मां के हाथ में लठिया देखकर वे रोते रोते बारंबार अपनी आंखों को अपने दोनों हस्त कमलों से मसल रहे हैं। उनके नेत्र भय से विह्वल हैं, रुदन के आवेग से सिसकियां लेने के कारण उनके त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपित हो रही है। इन परमेश्वर भगवान दामोदर का, जिनका उदर रस्सियों से नहीं अपितु यशोदा मां के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, मैं प्रणाम करता हूं। जो ऐसी बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुलवासियों को आनंद सरोवरों में डुबाते रहते हैं और अपने ऐश्वर्य ज्ञान में मग्न अपने भक्तों के प्रति यह तथ्य प्रकाशित करते हैं कि उन्हें भय आदर की धारणाओं से मुक्त अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा ही जीता जा सकता है, उन भगवान दामोदर को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे न तो मोक्ष अथवा मोक्ष के चरम सीमारूप वैकुंठ में शाश्वत जीवन और न ही नवदा भक्ति द्वारा प्राप्त कोई अन्य वरदान मांगता हूं। हे नाथ, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि आपका यह वृंदावन का बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा प्रकाशित रहे, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी अन्य वरदान से प्रयोजन ही क्या है। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल मां यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित हो रहा है और आपके होंठ बिंब फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का यह सुंदर दृश्य मेरे हृदय के हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं। हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, हे नाथ, मेरे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुखों के सागर में डूबा जा रहा हूं। मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाइए। हे भगवान दामोदर, जिस प्रकार आपने दामोदर रूप से नल कुवर और मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को नारद जी के शाप से मुक्त कर उन्हें अपना महान भक्त बना लिया था, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरी एकमात्र आग्रह है। मुझे किसी भी प्रकार के मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली दीप्तिमान रस्सी को प्रणाम करता हूं। आपकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है और अनंत लीलाएं करने वाले आप परमेश्वर को मेरा प्रणाम है। श्री श्री दामोदर भगवान की जय। पहले स्कंद के 8वें अध्याय के 31वें श्लोक में कुंती महारानी इसी दृश्य को याद करती हैं। आपने भीष्म देव के बारे में भी सुना होगा कि जब वो अपने अंतिम क्षणों में थे तो मृत्यु के बाणों के शैया में लेटे हुए थे, तो उस समय जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात उनके सामने आकर बैठे तो उन्होंने श्री कृष्ण के सामने अनेक सुंदर श्लोक कहे, जिसमें वो श्री कृष्ण के अनेक लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और अलग अलग अवस्थाओं में श्री कृष्ण का स्मरण करते थे। और विशेष करके जब श्री कृष्ण रथ चलाते हुए युद्ध भूमि में बहुत ही सुंदर लग रहे थे, हालांकि उनके बाल बिखरे हुए थे, बालों में धूल आ गई थी, चेहरे पे पसीना था, लेकिन फिर भी ये दृश्य भीष्म देव को बहुत सुंदर लग रहा था। भगवान श्री कृष्ण हमेशा सुंदर ही रहते हैं। कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षक। कृष्ण का एक ऐश्वर्य है सौंदर्य, परिपूर्ण सौंदर्य। तो जब हम पसीने से युक्त हो जाते हैं, हमारे बाल में या हमारे शरीर में धूल आ जाता है तो हम सुंदर नहीं लगते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है ऐसी अवस्था में। तो ऐसे अनेक दृश्यों को भीष्म देव याद कर रहे थे। तो उसी प्रकार से कुंती महारानी श्री कृष्ण के अनेक अवस्थाओं को याद कर रही हैं, जबकि श्री कृष्ण हस्तिनापुर छोड़कर द्वारका लौट के जाने वाले हैं, और इस समय कुंती महारानी इस दामोदर लीला का स्मरण कर रही हैं इस सुंदर श्लोक के माध्यम से। गोपी गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम ताव या ते दशाश्रुकलिलां जनसंभ्रमाक्षम्। वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम ताव या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम्। वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे कृष्ण, जब आपने अपराध किया था तो यशोदा ने जैसे ही आपको बांधने के लिए रस्सी उठाई तो आपकी व्याकुल आंखें अश्रुओं से डबडबा आईं, जिससे आपकी आंखों का काजल धुल गया। यद्यपि आपसे साक्षात काल भी भयभीत रहता है किंतु आप भयभीत थे। यह दृश्य मुझे मोहग्रस्त करने वाला है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पहली बार कुंती महारानी मोहग्रस्त हुई इसीलिए वो कहती हैं कि अन्य सभी मोहित होते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं अति मानवीय प्रतीत होती हैं। हालांकि वो भगवान हैं फिर भी एक साधारण मनुष्य की तरह लीला करते हैं और फिर ऐसे लगता है कि शायद वो पक्षपात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये पहली बात है जो कि भ्रामक है, भ्रम में डालने वाली बात है। दूसरी बात ये कि भगवान के दिव्य क्रियाकलाप, इनमें कभी कभी विरोधाभास लगता है और इसलिए लोग भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण को अच्छी तरह से जानता है, जो भगवान का भक्त है, उसके मन में इन तथा कथित विरोधाभासों का समन्वय आसानी से हो जाता है। परंतु फिर भी बाहर जो संसार में लोग हैं जो कृष्ण को नहीं जानते हैं, उनके लिए ये एक बहुत मोह में डालने वाली बात है। और खास करके जब वो तरह तरह की योनियों में प्रकट होते हैं और फिर भी अपनी भगवत्ता को बनाए रखते हैं, ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है, जिससे कि हम जान सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अचिंत्य है, हमारे कल्पना के बाहर। और इस श्लोक में कुंती महारानी कह रही है कि सबसे विडंबना या भ्रामक विडंबना की बात यह है कि आप तो परम सत्य हैं, लेकिन फिर भी आप आपके भक्त के हाथों में एक कठपुतली या खिलौना बन गए हैं। ये बड़ी मोह में डालने वाली, विस्मित करने वाली बात है। इतने बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं आप, परम सत्य, सब कुछ आपके ऊपर आधारित है, आपसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जैसे कि आप गीता में वर्णन करते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, मैं ही परम सत्य हूं। भगवान ये नहीं कहते कि मैं एकमात्र सत्य हूं, हालांकि ये सत्य है कि भगवान एकमात्र सत्य है, परंतु भगवान कहते हैं मैं परम सत्य हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जीव भी सत्य है, ये भौतिक जगत भी सत्य है, आध्यात्मिक जगत भी सत्य है, जितने उनके पार्षद हैं गोलोक धाम में वो सब भी सत्य है, लेकिन ये सारे सत्य जो है कृष्ण के ऊपर आधारित हैं, स्वतंत्र सत्य नहीं है, और सब श्री कृष्ण में सम्मिलित हैं। कोई भी ऐसी वस्तु या व्यक्ति नहीं है जो कि श्री कृष्ण से भिन्न है, स्वतंत्र है, सब कुछ श्री कृष्ण के भीतर है, श्री कृष्ण के ऊपर निर्भर है, ये सब कृष्ण है। कई बार श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कृष्ण का मतलब ये नहीं कि केवल व्यक्ति कृष्ण, लेकिन उस व्यक्ति कृष्ण के साथ साथ हमको कृष्ण के भक्त, कृष्ण के धाम, कृष्ण का भौतिक जगत, कृष्ण के नाम, जितना भी सब कृष्ण से संबंधित है, उस सब को एक साथ समझना होगा। ये कृष्ण है संपूर्ण परम सत्य। तो ऐसे परम सत्य जिसमें सब कुछ सम्मिलित है, जो सबके बुनियाद हैं, आधार हैं, वो परम सत्य एक खिलौना बने हैं, जिसके माया शक्ति के द्वारा इस भौतिक ब्रह्मांड के, बल्कि अनंत कोटि भौतिक ब्रह्मांडों के बद्ध जीव खिलौने बन गए हैं। वो भी डायरेक्ट कृष्ण के हाथों में नहीं, कृष्ण के जो दूत होते हैं, उनकी शक्तियां होती हैं, जैसे माया देवी हैं, उनके हाथों में ये बद्ध जीव खिलौने बन गए हैं, कठपुतली हो गए हैं। और वही कृष्ण अब उनके शुद्ध भक्त के नीचे एक कठपुतली बने हैं। तो ये चकराने वाली बात है। कुंती महारानी अपने मन में इन दोनों बातों को स्थित नहीं कर पा रही हैं, अकोमोडेट नहीं कर पा रही हैं कि कहां एक बात कहीं कहां दूसरी बात। इसलिए वो कहती हैं कि मेरा सर चकरा रहा है, मैं मोहग्रस्त होती जा रही हूं। सामाम विमोहयति, मुझे बड़ा विमोह हो गया है। दो प्रकार के भक्ति होते हैं इस जगत में, एक जो कि वृंदावन के निवासियों ने दिखाया और दूसरा जो अन्यों ने दिखाया। एक ओर वृंदावन है और दूसरी ओर अन्य सारा आध्यात्मिक जगत है, अर्थात वैकुंठ जगत। वैकुंठ जगत के प्रेम की विशेषता यह है कि वहां के निवासी या भक्त भगवान से एक ऐश्वर्य युक्त भावना से प्रेम करते हैं, भक्ति करते हैं। उनके मन में हमेशा ये भावना रहती है, ये ज्ञान रहता है कि हम जिसकी सेवा कर रहे हैं, जिससे प्रेम कर रहे हैं, वो परम सत्य हैं, वो भगवान हैं। इसलिए थोड़ी बहुत भय की भावना तो रहती है, एक ऐसी भावना जैसे कि कोई बड़ा आदमी हमारे सामने आए, हम भले भयभीत भी न हो लेकिन एक तरह की ऐश्वर्य युक्त भावना रहती है, तो वो है वैकुंठ का भाव। बृहद भागवतामृत नाम का एक सुंदर ग्रंथ है, सनातन गोस्वामी द्वारा विरचित। उसमें नायक हैं, उसमें दो भाग हैं। एक भाग में नायक हैं गोप कुमार नाम का एक व्यक्ति जो कि मूल निवासी था गोवर्धन का, और फिर बड़ी सुंदर एक कथा है जो पढ़ने लायक है। वैसे लोग बाहर के उपन्यास पढ़ते हैं जिसमें बहुत ही ऐसे रोमांचकारक जो कथाएं होती हैं, लेकिन गोप कुमार जैसे रोमांचकारक कथा कहां मिलने वाली है। गोप कुमार तपस्या करते हैं, भजन करते हैं और उनको तरह तरह के पद मिलते हैं। सबसे पहले वो राजा बनते हैं, फिर राजा बनने के बाद उनको स्वर्गलोक में इंद्र बनने का मौका मिलता है, फिर वो महरलोक जाते हैं, जनलोक जाते हैं, तपलोक जाते हैं, फिर ब्रह्मा जी बन जाते हैं, फिर शिवलोक जाते हैं और अंततः वैकुंठ लोक में जाते हैं। ऐसे तरह तरह के लोकों में जाते हैं और जब वहां पहुंच जाते हैं ऊपर के लोकों में भी, जहां की भगवान की भक्ति ऐश्वर्य की भावना से हो रही होती है, और गोप कुमार तो जैसा उनका नाम कहता है वो तो गोवर्धन के हैं, वो जब उस समय भगवान को देखते हैं, भगवान के सुंदर रूप को, तो स्वाभाविक रूप से वो पुकारते हैं भगवान को, हे गोपाल, हे गोविंद। और सभी जो वहां के भक्त हैं कह, अरे क्या कर रहे हो, ये तो हमारे भगवान है, इतने निकटता से, यानी कि हमारे मित्र हैं, हे गोपाल गोविंद ऐसे करके नहीं पुकारना चाहिए, थोड़ी मर्यादा रखो, क्या कर रहे हो। वो थोड़ा उनको शौक हो जाता है कि अरे ये कहां से अचानक हे गोपाल हे गोविंद कह के आ रहा है। तो इस प्रकार से ये भाव में अंतर होता है। वृंदावन में ऐश्वर्य की भावना नहीं है, ऐश्वर्य तो प्रचुर मात्रा में है, बल्कि वैकुंठ से ज्यादा, परंतु माधुर्य की मात्रा इतनी अधिक है कि ऐश्वर्य ढक जाता है, ऐश्वर्य का महत्व नहीं रहता। वहां पर शुद्ध माधुर्य प्रेम का प्राधान्य होता है। तो वहां पर वृंदावन में लोग स्वाभाविक रूप से ऐश्वर्यहीन भावना से श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, सेवा करते हैं, उपासना नहीं सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं उन्हें, बल्कि कृष्ण वृंदावन में अन्यों की सेवा करते हैं। वैकुंठ में अन्य भगवान की सेवा करते हैं और वृंदावन में भगवान अन्यों की सेवा करते हैं। तो इस तरह से जब तीव्र प्रेम हो जाता है वृंदावन में, इस तीव्रता की वजह से भक्त भूल जाता है, या भक्त की ये जानकारी कि ये भगवान है, ये ज्ञान ढक जाता है भगवान की योग माया शक्ति द्वारा। और ऐसा जो प्रेम है भगवान ज्यादा पसंद करते हैं ऐश्वर्युक्त के ऐश्वर्युक्त प्रेम से की तुलना में। शास्त्रों में यह बताया गया है कि जब उनकी माता, भगवान की माता यशोदा, उनको डांटती हैं, कभी बांध देती हैं, या कभी गोपियां जब उनके ऊपर गुस्सा हो जाती हैं और उनके कोई क्रोध के वचन बोलती हैं, तो ये जो गुस्से या क्रोध के जो वचन हैं, भगवान श्री कृष्ण को वेद वाक्यों से ज्यादा पसंद है, उनको ज्यादा आनंद आता है। जब देवतागण जाते हैं क्षीर सागर के तट पर और फिर वो पुरुष सूक्त प्रार्थना करते हैं, या तरह अलग अलग जगह में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है जिसमें भगवान का गुणगान किया जाता है, आप परम हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, भगवान को इतना आनंद नहीं आता। जब गोपियां भगवान को कहती हैं आप तो धोखेबाज हो, तब उनको अच्छा लगता है, पसंद होता है। कोई वैकुंठ का निवासी भगवान को धोखेबाज कहेगा? कभी नहीं कहेगा। कोई वैकुंठ का निवासी भगवान को यह नहीं कह सकता कि तुम्हारे ऊपर कभी विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता वैकुंठ में। वैकुंठ में कोई भी भक्त लाठी लेकर भगवान के पीछे नहीं जा सकता, रस्सी लेकर के उसको बांधेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे तीव्र प्रेम की वजह से भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी बात की पुष्टि यहां दामोदर लीला में होती है। दामोदर लीला तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी संक्षेप में इसका वर्णन करेंगे। जब श्री कृष्ण अपने माता के साथ और वात्सल्य प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते थे, तो उन्होंने जो दही का मटका है उसको फोड़ दिया, जैसे वो अक्सर किया करते थे। और इतने उदार थे श्री कृष्ण अपने बाल रूप में भी कि दही का मटका फोड़ने के बाद सबको बांटते थे, खुद भी तो खा लेते थे पेट भर के, साथ साथ अपने मित्रों को और वृंदावन के जो प्रसिद्ध बंदर हैं उनको भी खिलाया करते थे। और एक बार जब माता यशोदा ने श्री कृष्ण की हरकतों को देखा तो उनको बड़ा गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो सोचा कि अब तो श्री कृष्ण को बांध के रखना चाहिए, अभी इसकी हरकतें बहुत बढ़ रही हैं। और इस विचार को मन में रखते हुए माता यशोदा चलती हुई आई कृष्ण के पास। कृष्ण ने जब देखा कि माता यशोदा ऐसे एक भाव लेकर आ रही हैं कि वो बांधने के लिए, तो श्री कृष्ण उखल से कूद कर भागने लगे और माता यशोदा उनके पीछे भागने लगे। माता यशोदा का शरीर थोड़ा भारी था, इसलिए वो उतनी तेजी से नहीं भाग पाए जितना कि कृष्ण भागे जा रहे थे। और वैसे भी जैसे आपको मालूम है कि माता यशोदा और नंद महाराज को संतान थोड़ी देर से हुआ। वास्तव में जब किसी को संतान बच्चों का जन्म होता है तो माता पिता को उम्र भी कम होता है थोड़ा, वो भी जवान होते हैं, युवक युवती होते हैं माता पिता। लेकिन नंद महाराज और माता यशोदा को उम्र थोड़ा बहुत बढ़ गया था, इसलिए माता यशोदा उतना भाग भी नहीं पाई। और कृष्ण तो कृष्ण से ज्यादा कौन अधिक तेज भाग सकता है। लेकिन फिर भी माता यशोदा ने बहुत परिश्रम करके एक हाथ में लाठी पकड़ के भागे जा रही थी। और इस दृश्य का सुंदर वर्णन हमने अभी पढ़ा सत्यव्रत मुनि के भजन में। माता यशोदा के बालों से फूल गिर गए, बाल बिखर गए, पसीना पसीना छूट रहा था, और अंदर ही मन ही मन में कह रही थी अभी दिखाऊंगी, अभी पकड़ो, पकड़ती हूँ, अभी पकड़ती हूँ, ठहरो तो सही, इस बार तो अच्छा सबक सिखाऊंगी। इस प्रकार से गुस्से से कौन वैकुंठ में जा सकता है कृष्ण के पास, ठहरो ठहरो मैं अभी आ रही हूं, अभी आ रही हूं, कौन कह सकता है। तो माता यशोदा ने फिर पकड़ लिया, और जब माता यशोदा को ऐसे गुस्से के रूप में देखा, जो श्री कृष्ण के चेहरे के ऊपर था उसका वर्णन यहां पर कुंती महारानी वर्णन कर रही है। गोप्यादे, गोपी मतलब यहां पे गोपी माता यशोदा को संबोधित करता है। आददे जब उसने हाथ में लिया, क्या लिया? दाम, दाम मतलब रस्सी। माता यशोदा ने रस्सी हाथ में ले ली, कब? जबकि कृत आगसी, कृत मतलब किया, आगसी मतलब कोई एक उत्पाद किया। तो श्री कृष्ण ने क्या उत्पाद किया था? दही का भांडा जो है वो फोड़ दिया था। तो ऐसे जब किया, यह दशा उस समय क्या दशा थी, उस दशा का वर्णन करने जा रही है। अश्रु कलिला, अश्रुओं से उनके आंख जो है वो भर गए, पहली बात भयभीत हो गए। और अंजन संभ्रमा, उनके आंखों में जो काजल लगाया हुआ था वो विचलित हो गया, मतलब वो बिखर गया। और साथ साथ में संभ्रमाक्षम, उनके आंखें जो है, आंखों के ऊपर जो काजल वो अपने आंसुओं की वजह से सब इधर उधर बिखर गया, काल के ऊपर, कपोलों के ऊपर सब काला काला सब लग गया काजल का। और वक्त्रम, वक्त्रम मतलब मुंह, निनी है मतलब नीचे, भय से थोड़ा नीचे सर हो गया, अपनी माँ को आंखों में आंखें लगाकर नहीं देख सके डर के मारे, क्योंकि माँ की आंखें गुस्से से भरी हुई थी, तो साहस नहीं हुआ कृष्ण को ऊपर देखने के लिए, आंख सर नीचे करके वो भयभीत होके आंखों से आंसू आ रहे थे। वक्त्रम विनीय भय भावनया स्थितस्य, भय की भावना से वो ऐसे मुंह नीचे करके बैठे थे, कपोल बड़े हो गए थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। सामाम विमोहयति भीरपि यत् बिभेति, तो ऐसे दृश्य में को देखकर कुंती महारानी सोच रही हैं कि अरे ये जो परम सत्य है जिनके लिए सब कोई, जिनके पीछे सब कोई भाग रहा है, जिनके नाम मात्र से सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के दिक्पाल भी डरते हैं, ये अब माता यशोदा से डर रहे हैं। शास्त्रों में श्लोक है, भीषास्माद् वातः पवते भीषो देति सूर्यः, भीषास्माद् अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः, कि वात या जो पवन है वो भी भगवान श्री कृष्ण के डर से बहता है। भीषो देति सूर्यः, सूर्यदेव अपनी उष्णता अपना प्रकाश देते हैं श्री कृष्ण के डर से। सूर्यदेव कभी छुट्टी नहीं लेता कि आज मैं अग्नि उष्णता प्रकाश नहीं दूंगा, आज के लिए मैं थोड़ा आराम करूंगा कृष्ण के डर से। और साथ साथ भीषास्माद् अग्निश्चंद्रश्च, अग्नि अपना स्वभाव नहीं बदलता है कृष्ण के डर से। अग्नि ये नहीं सोचता कि आज मैं बर्फ के समान ठंडा हो जाऊंगा, एक दिन थोड़ा आराम करूंगा, नहीं, अग्नि का स्वभाव वैसे का वैसे ही रहता है। उसी प्रकार से चंद्र चांद भी अपना कार्य करता है, यहां तक कि मृत्युर्धावति पंचमः, पंचम मतलब जो पंच प्राण हमारे शरीर में हैं, वो जब प्राण शरीर को छोड़ के जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। तो ये मृत्यु मूर्तिमान मृत्यु जो है हमारा पीछा करता है हर एक व्यक्ति का, इसलिए सभी लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। नहीं तो मृत्यु मूर्तिमान मृत्यु अगर थोड़ा बहुत इधर ढीले पड़ गए तो हो सकता है कोई व्यक्ति नहीं मरे और फिर मृत्यु को अचानक क्या था, अरे मैं इसके पीछे गया ही नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। मृत्यु तो हर एक व्यक्ति के पीछे भागता है, अपना कर्तव्य जो है वो बराबर कर लेता है, क्यों, कृष्ण के डर से। तो सब यहां चल रहा है भगवान के डर से। डर भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है इस जगत में, अगर डर नहीं होता तो शायद कुछ भी नहीं होता यह जगत में। विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता, हम लोग सब पाप करते, जो चोर है वो चोरी करते, डकैत है वो डकैती करते, तो इस प्रकार से डर के मारे सभी लोग कृष्ण के आदेश का पालन करते हैं। लेकिन यही कृष्ण अब अपनी माता यशोदा से डर गए हैं, तो वहां पर यहां पर कुंती महारानी कहती हैं, भीर अपि यत् बिभेति, भगवान डर गए हैं भय भावनया स्थितस्य, डर गए हैं हालांकि मूर्तिमान भी या भय उनसे भयभीत होता है। तो ये चकराने वाली बात है कुंती महारानी के लिए, और ये दृश्य जो है कुंती महारानी अपने हृदय में रख रही हैं। कुंती महारानी अच्छी तरह से श्री कृष्ण के भगवत्ता को जानती हैं, यशोदा माता नहीं जानती है। कल भी संक्षेप में हम वर्णन कर रहे थे किसका स्थान श्रेष्ठ है, कुंती महारानी या यशोदा माता, क्यों यशोदा माता का क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि उनका प्रेम श्रेष्ठ है। उस प्रेम श्रेष्ठ होने की वजह से क्या होता है, हाँ, भगवान के भगवत्ता को नहीं जानती है, वो कृष्ण को केवल अपना बच्चा मानती है। आप तो जानते हैं कि भगवान को प्रेम करने के लिए तरह पांच रस हैं। कोई मित्र के रूप में भगवान से प्रेम कर सकता है, कोई प्रेमी के रूप में, कोई अपने बच्चे के रूप में भी प्रेम कर सकता है। तो माता यशोदा वात्सल्य भक्तों में से नंबर एक पे हैं। श्री रूप गोस्वामी ने विश्लेषण किया है कि जितने वात्सल्य रस के भक्त हैं उनमें से प्रथम श्रेणी के हैं माता यशोदा। नंबर दो में कौन आते हैं, नंद महाराज। तीसरे नंबर में कौन आते हैं, माता रोहिणी। चौथे नंबर में कौन आते हैं? जो वृंदावन के वरिष्ठ गोपियां हैं, विशेष करके उन वो गोपियां जिनके बच्चे जो हैं वो एक साल के लिए कृष्ण बने थे ब्रह्म विमोहन लीला के समय। पांचवें नंबर पे कौन है? देवकी माता। छठे नंबर पे कौन है? वसुदेव भी नहीं, वसुदेव की अन्य 15 रानियां। अन्य 15 क्यों? 16 में कौन थी? रोहिणी देवी। तो अन्य 15 रानियां जो हैं, मतलब देवकी और रोहिणी को छोड़कर, वो नंबर 6 पे हैं। नंबर 7 कुंती महारानी। तो कुंती महारानी का नंबर 7 है। उसके बाद 8वां नंबर है वसुदेव का और 9वां नंबर है सांदीपनी मुनि का, जो उनके गुरु रहे। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए यार, कुंती महारानी तो 7वें नंबर में है। नहीं, हमारे लिए तो बहुत पूजनीय आराध्य है, लेकिन एक तुलनात्मक दृष्टि से यशोदा मैया की तुलना से यशोदा मैया नंबर 1 पे है और कुंती महारानी नंबर 7 पे है। और जैसे जैसे प्रेम और तीव्र होता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति को वृंदावन में ऊपर की श्रेणी दी जाती है। तो माता यशोदा इस बारे में क्यों अज्ञात अवस्था में थी कि कृष्ण भगवान है? पहला कारण तो ये है कि अगर माता यशोदा को ये पता चल जाता कि ये जो बच्चा है कृष्ण, ये वास्तव में भगवान है, तो माता यशोदा इस प्रकार से कृष्ण को प्रेम नहीं कर सकती थी, कृष्ण को डांट नहीं सकती थी, वो तो भयभीत हो जाती। ये माता यशोदा की तरफ से है और भगवान कृष्ण की तरफ से। भगवान कृष्ण भी चाहते हैं कि माता यशोदा उनको डांटे। माता यशोदा के साथ इसी प्रकार के प्रेम का आदान प्रदान श्री कृष्ण करना चाहते हैं, इसी में वो ज्यादा आनंद लेते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ऐसे अलग अलग भूमिकाओं को निभाते हैं तो परिपूर्णता से निभाते हैं। अगर किसी का बच्चा बनते हैं तो ऐसा बच्चा बनते हैं कि सबसे अच्छा आदर्श बच्चा, और ऐसे अपने माँ या माता या पिता के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं जो कि अन्य बच्चे भी नहीं कर सकते। इस प्रकार से दोनों भगवान कृष्ण और माता यशोदा के प्रेम को बढ़ाने के लिए भगवान की लीला शक्ति या योग माया ने माता यशोदा के आंखों के ऊपर ये पर्दा डाल दिया। तो वास्तव में जब कुंती महारानी यहां कृष्ण की उपासना कर रही है, कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, ये गुणगान वास्तव में माता यशोदा का है। क्यों? वैसे माता यशोदा को केवल उन्होंने कहा कि आपने बांधा, ऐसे लग रहा है कि इस श्लोक में कृष्ण का गुणगान हो रहा है, लेकिन वास्तव में माता यशोदा का गुणगान हो रहा है। क्यों? अगर कृष्ण महान है तो माता यशोदा उनसे ज्यादा महान। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को भयभीत कर दिया। इनका प्रेम इतना ज्यादा था कि कृष्ण ने स्वयं अपने आप को आश्रित कर दिया माता यशोदा के चरणों में। तो देखो कितनी महान है माता यशोदा। तो कुंती महारानी तो इस प्रकार से माता यशोदा की महानता का वर्णन कर रही है। माता कुंती महारानी को वो साहस नहीं है कि वो वही चीज करे जो कि माता यशोदा ने किया था। कुंती महारानी कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी कृष्ण को डांटेंगे नहीं इस प्रकार से, उनको साहस नहीं है। ये जो एक अधिकार है ये केवल यशोदा माता के लिए है। इसलिए कुंती महारानी जो है वो दूर से ही माता यशोदा को प्रार्थना करती है, मैं आपके जैसे नहीं बन सकती, आपके चरणों में प्रणाम है। कृष्ण तो रहे एक तरफ, लेकिन अब वो केवल यशोदा मैया को कह रही है, आपका स्थान इतना महान है, इतना ऊंचा है कि हम कुछ कह नहीं सकते। वृंदावन के निवासी इस बात के ऊपर जोर नहीं देते हैं, बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है, बल्कि उनको मालूम भी नहीं है और कभी विश्लेषण करके सोचना भी नहीं चाहते ये श्री कृष्ण भगवान है या नहीं है। वो कभी शास्त्रों को पढ़ के भगवत तत्व, भक्ति तत्व, नाम तत्व, ये सब तत्व जानने के लिए उनकी कोई इच्छा नहीं है। ऐसे कोई वर्णन नहीं आता कि ब्रिजवासी बैठकर कृष्ण कथा करते इस प्रकार से क्लास में कि कृष्ण को समझो, इनसे ऊपर श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है, ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों के मालिक हैं, ऐसे सृष्टि की रचना श्री कृष्ण करते हैं, पहले गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, फिर क्षीरोदक्षाय, ऐसे सब वो अभ्यास नहीं करते। वृंदावन को के निवासियों जो हैं, उनके मन में एक ही इच्छा है, कैसे कृष्ण को प्रेम करना, बस। कृष्ण कौन है, ये भगवान है भी या नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है। और अगर कोई उनको बोले भी कि ये भगवान है, वो विश्वास नहीं करेंगे। तो ये वृंदावन की विशेषता है। लेकिन वृंदावन के बाहर जो रहते हैं भक्त, जैसे कुंती महारानी जो कि हस्तिनापुर के निवासी हैं, वो वृंदावन के निवासियों की ओर देखते हैं, जैसे कुंती महारानी यशोदा माता की ओर देख रही हैं, प्रणाम करते हैं कि आपका स्थान, आप ब्रजवासियों का स्थान बहुत महान है, आप इस प्रकार से प्रेम करते हैं श्री कृष्ण को कि जो प्रेम हमारे हृदय में कभी नहीं हो सकता। उद्धव भी जब द्वारका से आए थे, उन्होंने सोचा था कि मैं शायद एक अच्छा भक्त हूं, लेकिन जब वृंदावन में आए और गोपियों का और अन्य ब्रजवासियों का प्रेम देखा, तो उनको पता चला कि मेरा प्रेम इनके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि मैं ये चाहता हूं कि मैं वृंदावन में एक घास का तिनका बनकर जन्म ले लूं, ताकि ये सब गोपियां जो हैं जब इधर उधर जाएंगी अपने कार्य के लिए, तो उनके चरण कमल की धूली जो है मेरे सर पर होगी, और इस तरह से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उद्धव जैसे महान भक्त, जो कि द्वारका में सबसे श्रेष्ठ भक्त माने जाते हैं, जो कृष्ण के समान ही दिखते हैं, हमेशा कृष्ण के साथ उठते बैठते घूमते हैं, ये उद्धव ऐसी अभिलाषा रखते हैं अपने जीवन में। तो कुंती महारानी भी यशोदा माता की तरह देखकर कहती हैं कि हम सब आपकी तरह तो कभी नहीं बन सकते, हम केवल दूर से प्रणाम कर सकते हैं आपको। तो देखिए वृंदावन के निवासियों का स्थान कितना विशेष होता है। वैसे ये जो भावनाएं हैं, ये कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, ये सत्य है, और हम भी ऐसी लीलाओं में भाग ले सकते हैं, परंतु इतनी जल्दी नहीं, सही समय पर। बहुत कुछ हमें करना है उसके पहले। हृदय को अभी तक बहुत शुद्ध करना है। भगवान की तीव्र भक्ति करके जब हमारा हृदय पूरी तरह से प्रेम से भर जाएगा, उसके बाद एक और जन्म कहीं मिलेगा, कहीं जब भगवान श्री कृष्ण किसी भौतिक जगत में कहीं लीला कर रहे हों, उन लीलाओं में शामिल होने के बाद फिर आखिर में हमें साक्षात गोलोक वृंदावन में प्रवेश मिलेगा, फिर हम नित्य लीला में भाग ले सकते हैं। हमारे जो महान वैष्णव आचार्य हुए, जब प्रेम ध्वनि प्रार्थना कहते हैं, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज काचार्य अष्टोतर नित्य लील प्रविष्ट, भक्तिविदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, नित्य लीला प्रविष्ट, जो भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं गोलोक वृंदावन में, उसी प्रकार से हमें भी भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना है। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन ये कोई सस्ती चीज नहीं है, कोई सहज बात नहीं है। इसके लिए हमें बहुत गंभीरता से हमारी भक्ति करनी होगी, फिर आगे चल के भगवान, गुरु और वैष्णवों की कृपा से इस पद की प्राप्ति हमें हो सकती है। यहां इस लीला में भगवान श्री कृष्ण अपने एक विशेष ऐश्वर्य का प्रदर्शन करते हैं, और वो है उनका सौंदर्य। हालांकि श्री कृष्ण का सौंदर्य उनके आयु के अलग अलग स्तर में अलग अलग होता है। कृष्ण के सौंदर्य की सीमा कब होती है, कौन से आयु में, देखिए अलग अलग स्तर होते हैं ना जीवन के। 5 साल तक जो है वो आयु, उसको क्या कहते हैं, कौमार। उसके बाद 6 से 10 पौगंड, और 10 से 15 कैशोर और 16 से आगे यौवन। तो ये कौमार, पौगंड, कैशोर और यौवन, ये चार अवस्थाएं हैं। अब कृष्ण का सौंदर्य कौन से आयु में सबसे ज्यादा है? कौमार में। थोड़े बोलते हैं कौमार। कैशोर में, कैशोर अवस्था में। जैसे एक फूल खिलता है, अंकुर जो होता है वो भी सुंदर होता है, लेकिन जब फूल खिल जाता है तो वो सबसे सुंदर होता है। उसी प्रकार से कृष्ण का सौंदर्य किशोर अवस्था में सबसे अधिक होता है। हालांकि श्री कृष्ण जन्म के समय भी और 125 साल की उम्र में जब वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में थे उस समय भी वो सुंदर ही है, सौंदर्य की आपकी सीमा है वो, लेकिन फिर भी कृष्ण के कैशोर रूप और कृष्ण के यौवन रूप और कृष्ण के बाल रूप में देखा जाए तुलनात्मक दृष्टि से तो कृष्ण किशोर अवस्था में सबसे सुंदर रहते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी बाल लीला करते समय, इस लीला के अंदर जबकि श्री कृष्ण ऐसे रोने की अवस्था में हैं, तो उनका सौंदर्य और भी बढ़ जा रहा है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में कि इस लीला में श्री कृष्ण अपने सौंदर्य के ऐश्वर्य को प्रकट कराते हैं और ये सौंदर्य देखकर, भयभीत अवस्था में अपने बच्चे को देखकर माता यशोदा को अचानक हिचकिचाहट हो गया कि अरे ये मैं क्या कर रही थी, बेचारे डर गया है, मैं तो उसको मारने जा रही थी, तो छड़ी नीचे फेंक दी माता यशोदा ने। लेकिन फिर भी सोचा कि ठीक है, मेरी भावना तो ये है कि बेचारा बेचारे कह के उसको छोड़ दूं, लेकिन इसके भलाई के लिए नहीं है, इसको दंड तो देना ही पड़ेगा। तो हालांकि उनका मन नहीं चाह रहा था, लेकिन माता यशोदा ने अपना हृदय कठोर किया। जैसे कभी कभी माँ अपने बच्चे को दंड देती है, हालांकि उसका मन नहीं कहता लेकिन बुद्धि कहता कि दंड देना चाहिए, नहीं तो ये लड़का या बच्चा बिगड़ जाएगा। तो उसी प्रकार से माता यशोदा ने अपना हृदय मजबूत कर दिया और सोचा कि कुछ तो दंड देना चाहिए, मारेंगे नहीं, लाठी को देखकर, छड़ी को देखकर डर गया है मेरा बच्चा, तो छड़ी फेंक दी माता यशोदा ने और रस्सी लेकर फिर उखल से बांधने की तैयारी कर रही थी। और एक ऐश्वर्य या परिपूर्णता जो कि भगवान ने यहां पे प्रस्तुत किया है वो है कि उन्होंने परम सत्य होने के नाते अपने आप को अपने भक्त के हवाले कर दिया है स्वेच्छा से। और जैसे सत्यव्रत मुनि बताते हैं उनकी प्रार्थना में कि भगवान श्री कृष्ण वास्तव में उस रस्सी से नहीं बांधे गए बल्कि माता यशोदा के प्रेम से बांधे गए, अन्यथा कौन बांध सकता है। और वो कथा तो आप जानते हैं कि हर बार जब भी माता यशोदा भगवान के उदर को बांधने के लिए तैयारी कर रही थी तो रस्सी दो उंगली कम पड़ती थी हर समय। जितना भी रस्सी उनके पास था घर में उस सबको लाई एक बांध बांध के, फिर भी ये रस्सी दो उंगली कम पड़ती जा रही थी। माता यशोदा हैरान हो गई, पसीने छूट गए माता यशोदा के। अन्य गोपियां दूर खड़े होकर बड़ा आनंद ले रही थी इस दृश्य से, माता यशोदा के ऊपर हंस रहे थे कि क्या ये सब चल रहा है। उनको भी समझ में नहीं आ रहा था लेकिन माता यशोदा की हालत देखकर वो भी काफी हंस रहे थे। तो वैष्णव आचार्य बताते हैं कि ये दो उंगली कम पड़ना इसका मतलब क्या है कि अगर श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो हमें दो चीजें चाहिए। कौन सी है वो दो चीजें? कृपा और प्रयास, दोनों चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि हम केवल भगवान की कृपा की राह देखेंगे, हम जप नहीं करेंगे, मंदिर नहीं आएंगे, हम अपने घर में सोएंगे टीवी के सामने और कृपा, भगवान तो हमेशा सबके ऊपर कृपा करते हैं, लेकिन जैसे वो सोचते हैं वैसे कृपा करते हैं। और दूसरी ओर से अगर कोई कहेगा अरे कृपा में मैं विश्वास नहीं करता, मैं मेरे परिश्रम से, मेरे तपस्या से, मेरे भक्ति से मैं इतना प्रेम करूंगा भगवान को कि उनको कृपा देना ही पड़ेगा, मुझे प्रेम देना ही पड़ेगा, नहीं, भगवान देखेंगे यहां इसको तो घमंड हो गया है, ये तो सोच रहा है कि मैं मेरे प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने में जिम्मेदार हूं। लेकिन नहीं, भगवान की कृपा के सिवाय प्रेम प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए दोनों चीजें चाहिए। दक्षिण भारत के श्री संप्रदाय में दो भाग हो गए हैं, विभाजन हो गए हैं दार्शनिक दृष्टि से। एक भाग का तिंगलाई वडगलाई, तिंगलाई और वडगलाई, तिंगलाई और वडगलाई दो है। एक बोलते हैं कि केवल हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए, बाकी भगवान सब कर देंगे। इसको मार्जर न्याय कहते हैं। जो बिल्ली अपने बच्चे को कैसे उठाकर ले जाती है, केवल उसका गर्दन पकड़ती, उसका गला पीछे गर्दन पकड़ती है मां, और उसको उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। बच्चे को कुछ नहीं करना पड़ता, बच्चा केवल मां के शरण में आके रह जाता है और मां उसके पकड़ के दांतों में एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो ऐसे उनका, इन भक्तों का कहना है कि हम केवल भगवान के शरण में जाएं अपने मन से, भगवान बाकी सब कुछ कर देंगे। और दूसरे हैं जो कहते हैं कि नहीं, मरकट वैराग्य, मतलब बंदर का बच्चा जो होता है, आपने देखा वृंदावन में इतने सारे बंदर हम देखते हैं, और ये बच्चे जो होते हैं पकड़ के रहते हैं अपने मां को, अगर वो छोड़ दें तो वो गिर जाएंगे। मां लेके जाती है इधर से उधर, भाई बच्चे को बहुत प्रयत्न करना पड़ता, पूरा प्रयास करना पड़ता है मां को, कभी पेट में कभी पीठ में बच्चे बैठते हैं, मां को पकड़ के रखते हैं। तो कहते हैं कि उसी प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए, हमारे प्रयास से सफलता प्राप्त होगी। परंतु गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के अनुसार हमें दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें करने से फिर पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से दामोदर लीला से एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें सीखने को आता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने जब ये सुंदर लीला की तो माता यशोदा ने उनका पूरा पूरा लाभ उठाया। कुंती महारानी उस दृश्य को, उस लीला को याद कर रही हैं और सोच रही हैं कि भगवान वास्तव में अद्भुत हैं, माता यशोदा कितनी भाग्यशाली हैं कि हम कभी माता यशोदा जैसे नहीं बन सकती। और ऐसे दोनों के चरणों में प्रणाम करते हुए कुंती महारानी अब अगला प्रार्थना करेंगी, जिसको अगले बार हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। ब्रजवासियों की विशेषता ये है कि वो इसलिए ऐसा नहीं सोचते कि कृष्ण भगवान है इसलिए उनको प्रेम करना चाहिए, वो बस कृष्ण को प्रेम करते हैं। लेकिन हम जब भक्ति में आए, हमको कितने लोगों को समझाना, कितने लोगों ने हमको समझाया, देखो तुम्हें भक्ति करना चाहिए क्योंकि कृष्ण परम सत्य हैं, कैसे दुर्गा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, है ना। हमको बहुत समझा बुझा के, कितने संशय हमारे मन में, कितना समय लगा इन संशयों को दूर करने के लिए, फिर समझ में आया कि कृष्ण भगवान है, चलो इनकी सेवा करो। तो हमारा विचार क्या है, कृष्ण भगवान है इसलिए उनकी भक्ति करो। अच्छी बात है, लेकिन ब्रजवासी ऐसा नहीं। जब ग्वाल बाल हर रोज कृष्ण के साथ लीला करते और कृष्ण को देखते, कोई सुंदर लीला करते हुए, जैसे धेनुकासुर का वध किया और सारे ग्वाल बालों को उन्होंने ताल वृक्ष के सुंदर स्वादिष्ट फल दिए, या तो फिर जब श्री कृष्ण ने दावानल को निगल लिया और अपने ग्वाल बालों मित्रों को बचाया, या अलग अलग असुरों का वध उन्होंने किया, तो ग्वाल बाल सोचते थे कि कृष्ण कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर हैं कृष्ण, और घर में जाके बताते कृष्णा इज सो वंडरफुल, कृष्णा एक अध्याय है हमारे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम में, वंडरफुल कृष्णा, कृष्ण कितने वंडरफुल हैं। और जब भी वृंदावन के निवासी कृष्ण के ऐसे वंडरफुल लीलाज को देखते थे चकाचौंध करने वाले, विस्मित करने वाली लीलाएं, उनका प्रेम और भी बढ़ता था। ऐसी लीलाओं को देखकर जहां कि कृष्ण अपने भगवत्ता का प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे उनके ऐश्वर्य भावना नहीं आई उनके मन में, बल्कि उनका प्रेम और भी बढ़ गया, उनका प्रेम और गाढ़ा हो गया। हमारा कृष्ण देखो कितना अच्छा है, कितना शक्तिशाली है, हमारे कृष्ण ने ऐसे किया। तो ये भाव कुंती महारानी के पास नहीं है, कुंती महारानी के पास शुद्ध भक्ति है, शुद्ध प्रेम है, लेकिन उस प्रेम में थोड़ा बहुत एक ऐश्वर्य की भावना की मिलावट है। कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी?
आप अभी लास्ट में बताए थे दो चीज चाहिए, भगवान की चाहिए, प्रेम चाहिए। तो हम दो दिन के पहले प्रभु जी आए थे बॉम्बे से, उन्होंने प्रवचन में बता रहे थे 3.5 करोड़ नाम लेना तो भगवत भक्ति प्राप्त होता है। तो ये भी एक गिनती के ऊपर आप देखेंगे तो अब भगवान जबरदस्त प्रेम देना ही चाहिए क्या ऐसे? तो ये शास्त्र है, इसको मानना चाहिए, नहीं तो इसका क्या दृष्टि में देखना है? और दूसरी बात है, अभी इस जन्म में भी नहीं, कई जन्मों से भक्ति करके आए भक्त लोग, तो इसलिए पिछले जन्म में भी कुछ नाम लिया होगा, तो उसका गिनती भी इसमें आ जाता है। और तीसरा नंबर है वो हरि नाम बोले तो प्रभु का डाउट था, पूरा 3.5 करोड़ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसे 3.5 करोड़ मतलब हरे कृष्णा हरे एक शब्द एक माना जाता है, ऐसे ऐसे 3.5 करोड़।
हम ऐसे गिनती करते बैठेंगे तो आयु निकल जाएगी, भक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, ऐसे शास्त्रों में लिखा है 3.5 करोड़ का, परंतु हमें जानना चाहिए कि किस उद्देश्य से लिखा है, ये कहने के लिए कि हमें कितना जप करना चाहिए, कि हमें इसको सहज नहीं लेना चाहिए, कितना हमको कम से कम जप करना चाहिए, मतलब रोज कितने माला करने चाहिए, हमें इस बात को प्रेरणा देने के लिए कि इसको सस्ता मत ले लो, क्योंकि आपने सुना है कि एक नाम कृष्ण का लेने से इतना हो सकता है, मुक्ति हो मिल सकती है, कृष्ण प्रेम मिल सकता है, तो चलो एक नाम कृष्ण ले लिया बहुत हो गया। नहीं, रोज लेना चाहिए आपको, इतने माला कम से कम रोज करने चाहिए, ये बात को बताने के लिए। भक्ति किसी भौतिक फॉर्मूला के ऊपर, किसी अंक के ऊपर, नंबर के ऊपर आधारित नहीं है। ऐसा नहीं है कि 3.5 करोड़ कोई ले ले नाम तो उसको शुद्ध प्रेम मिल जाना चाहिए, जैसे ही वो गेट तक पहुंचे 3.5 करोड़ हो गया नंबर, शुद्ध भक्त हो गया, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यांत्रिक रूप से मैकेनिकल ढंग से करता है वो भी अच्छा है, 3.5 करोड़ लेना कोई आसान बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने 3.5 करोड़ भी लिया है नाम, उसको तो फायदा होगा ही, परंतु जब तक उस भावना से उसने नहीं लिया है उसको कृष्ण प्रेम शुद्ध प्रेम नहीं मिलेगा। और ये जो हरिनाम, इसका हर एक शब्द है, एक 3.5 करोड़ महामंत्र नहीं, 3.5 करोड़ नाम, हर एक नाम कुल मिलाकर 3.5 करोड़। जैसे हरिदास ठाकुर के बारे में बताया जाता था वो 3 लाख नाम लिया लेते करते थे, इसका मतलब है 192 माला होते हैं रोज हर दिन। इस दृष्टि से कृष्ण भक्ति रसभाविता मति ही क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यमेकनम जन्म कोटि सुकृतेर न लभ्यते। जन्म कोटि कोटि जन्मों से सुकृति किया, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, जो लौल्यम जो लालसा है भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए, वही एकमात्र तरीका है भगवत भक्ति प्राप्त करने का, शुद्ध प्रेम प्राप्त करने का। अगर हमने ये सोचा कि केवल 3 करोड़ जप करके हमें मिल जाएगा तो ये ठीक नहीं, ये भी एक गलत सोचने का ढंग है, और इसको भी हम एक पद्धति बनाते हैं, नाम को एक साधन बनाते हैं, नाम साध्य है इसको हम भूल जाते हैं। हरि नाम जो है साधन और साध्य दोनों है। अगर हम केवल ऐसा सोचेंगे कि इतना नाम जप करके हमको ये प्रेम मिल जाएगा, फिर हम शुद्ध भक्त हो गए, तो फिर हम केवल नाम के एब्सोल्यूट नेचर को हम समझ नहीं रहे हैं। नाम साधन और साध्य दोनों है, फिर इसको एक सुकृति बना रहे हैं हम केवल। आपने कहा कि इस दुनिया में सब कार्य भगवान के डर से हो रहा है, तो क्या हम भगवान की भक्ति डर से कर रहे हैं या प्रेम से? होना तो चाहिए प्रेम से, लेकिन प्रेम सबसे ऊंची अवस्था है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए चार तरह की प्रेरणाएं होती हैं। सबसे निम्न श्रेणी की प्रेरणा है भय। भयभीत होता है तो व्यक्ति कोई कार्य करता है। उसके ऊपर की श्रेणी है कोई इनाम। जैसे कोई व्यापारी है, व्यापार करता है, क्यों इतना कष्ट करेगा व्यापारी? कुछ तो मिलने वाला है ना अंत में महीने के, नहीं तो क्यों करे भला इतना परिश्रम। तो ये दूसरे श्रेणी का है। और फिर उससे ऊपर, उससे श्रेष्ठ है जो व्यक्ति कर्तव्य के स्तर पे कार्य करता है, भले उसको फायदा हो, नुकसान हो, भय हो न हो, ये मेरा कर्तव्य है, मुझे करते रहना चाहिए। ये इनाम से भी श्रेष्ठ स्तर है। और सबसे ऊंचा है प्रेम। जो व्यक्ति सोचता कर्तव्य हो न हो, केवल प्रेम से करता है, ये सबसे ऊंचा स्तर है। तो दुनिया में लोग अलग अलग स्तरों में स्थित हैं। हम भी देखते हैं कि ऐसे कोई कार्य है जो हम भय से करते हैं, कोई कार्य हम इनाम के लिए करते हैं, कोई कार्य हम कर्तव्य के तौर से करते हैं, कोई कार्य हम प्रेम से करते हैं। जब प्रसाद लेना होता है तो बड़े प्रेम से करते हैं, जब जप करना होता है तो भय से करते हैं। कभी कभी माला नहीं करेंगे तो कुछ तकलीफ आएगी, आज के दिन में गड़बड़ हो जाएगा, माया का धक्का मिलेगा आज। तो एक व्यक्ति, अगर हम हमारी ही अंदर से परीक्षा करें, तो शायद दिन में हम इन चारों स्तरों में घूमते हैं, कभी भय, कभी कर्तव्य, कभी इनाम, कभी प्रेम। लेकिन हमें स्थित होना चाहिए सदैव उस पहले स्तर में, प्रेम के स्तर में। जो भी हम कार्य करते हैं वो प्रेम से उत्पन्न होना चाहिए, वो शुद्ध भक्ति के स्तर में ही संभव है। जब तक कि हम शुद्ध भक्ति के स्तर में नहीं आएंगे, तब तक इन तीनों निम्न श्रेणी के कारणों का मिलावट रहेगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए उस प्रेम के स्तर तक पहुंचने के लिए, और जो भी हम कार्य करते हैं वो प्रेम से उत्पन्न होने चाहिए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। आप
हरे कृष्ण।
हमने बताया कि जब एक भक्त शुद्ध हो जाता है तो पहले भवन वृंदावन में जहाँ पे भगवान का लीला चल रही है उधर पे वो भाग लेता है, बाद में उनको गोलोक वृंदावन में प्रवेश मिलता है, या ऐसे क्यों डायरेक्ट क्यों नहीं?
थोड़ा ट्रेनिंग मिलना पड़ता है पहले। जैसे इसका विपरीत एक उदाहरण देखें, अगर कोई बहुत पापी व्यक्ति है, एक भौतिक उदाहरण इस दुनिया से, इस ब्रह्मांड के भीतर से आपको देते हैं, अगर कोई बहुत पापी व्यक्ति है और उसने ऐसे कार्य किए हैं जिससे कि उसको एक पशु का शरीर मिलना है, तो डायरेक्ट उसको साधारणतः पशु का शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि अभी वो मनुष्य देह में रह के आदत पड़ गई है, तो पशु की तरह उसको पशु का पसंद होना चाहिए, पशु जो करता है, तो उसको नरक में भेजा जाता है। नरक में ऐसा एक पशु उसको एक शरीर मिलता है ट्रेनिंग के लिए, फिर अच्छा ट्रेन होके फिर उस पशु शरीर में आता है, फिर उस शरीर का कार्य अच्छी तरह से कर देता है, तैयारी होती है। तो उसी प्रकार से इसके उल्टा, इसके विपरीत, अगर गोलोक वृंदावन में जाना है तो हम वहां की अंदर की बातें पता होनी चाहिए, कौन क्या है, किसका स्तर क्या है, किसकी सेवा क्या है, कौन कौन से वहां भी गोपियों के दल होते हैं, गोपों के दल होते हैं जो अमुक प्रकार की सेवाएं भगवान को करते हैं, तो ये सब हमको मालूम होना चाहिए, कौन कैसी सेवा करता है और हमें किसके असिस्टेंट बनना चाहिए, दासानुदासानुदास कौन से ग्रुप में बनना चाहिए, और सूक्ष्म सूक्ष्म बातें सब पता होने चाहिए। तो ये सब ट्रेनिंग मिलता है हमको। जो भी जीव ऐसे होगा पहले भौम वृंदावन में जाएगा, वहां जो नित्य सिद्ध ब्रजवासी हैं, जो भगवान के साथ